आरवी ने अभी को गले से लगा लिया और सॉरी कहा। अभी ने खुद को संभाला। सॉरी क्यों बोल रही है? आरवी अभी से अलग हुई और उसके चेहरे को देखते हुए उसने उसके कान पकड़े। सॉरी, रियली सॉरी। वो मैं आगे बोलते बोलते वो रुक गई। अभी ने उसका मुंह अपने हाथों में भर लिया और सिर हिलाते हुए उसके हाथ नीचे कर दिए। पागल, सॉरी मत बोल, मैं ठीक हूँ और चाहता हूँ तू भी ठीक रहे। तुझे पता है, अभी ने आरवी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मेरे पास सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स सब हैं। तू सब कुछ है मेरी, और सच में तू है ना मेरे पास, तो कोई कमी नहीं, और ना ही मुझे कभी किसी की कमी महसूस होती है। आरवी मुस्कुरा उठी। उसने फिर अभी को गले से लगा लिया। आई एम लकी यार, तू मेरा दोस्त है। मैं तुझसे भी ज्यादा लकी हूँ, बिकॉज तू मेरी दोस्त है। बोलते हुए अभी ने भी आरवी पर बाहें लपेट ली। आरवी अभी से अलग हुई तो उसने उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। आरवी अयांश के बारे में सोचती है। बात टेंशन की ही तो है यार, मीडिया वालों तक बात जा चुकी है। अब क्या होगा ये भी नहीं पता, समझ नहीं आ रहा। हम में से कोई किसी मीडिया वाले से नहीं मिला, फिर उन्हें पता कैसे चला कि मैं मेहरा सदन छोड़ आई हूँ? मिस्टर मेहरा के होते ये बात लीक कैसे हुई? उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात का ऐसे बाहर आना, वो भी उनके होते, इट्स नॉट पॉसिबल। तभी अभी बोल पड़ा, कहीं इसके पीछे मिस्टर मेहरा ही तो नहीं? क्या बोल रहा है? आरवी ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, वही जो तू कह रही है, उनके होते हुए जो हुआ है वो नहीं हो सकता। फिर भी हुआ है तो हो सकता है वही हूँ करने करवाने वाले, अभी एक ही सांस में बोल रहा था। आरवी ने उसकी बात काट दी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सच है आरवी, सच। अभी ने आरवी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। उनके होते ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही वो ऐसा कभी खुद करेंगे, और बात जब तुझसे जुड़ी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। तुझे तो पता है ना यार, जो अब सिचुएशन चल रही है, तेरा यहाँ होना, मिस्टर मेहरा का ध्यान तुझ पर होगा, सिर्फ उन्हें कुछ होश नहीं होगा, खोए होंगे वो तुझ में ही, सोच रहे होंगे तेरे बारे में ही। हो सकता है किसी को भनक लग गई हो, भनक समझ रही हो। अयांश मेहरा से रिलेटेड बात लीक होना कोई बड़ी बात भी नहीं है, हल्की सी चिंगारी काफी है आग लगने के लिए। मीडिया वाले तो गिद्ध की भांति नजर बनाए रखते हैं, कब कुछ हाथ लगे और कब वो उसका फायदा उठाए। आरवी की भौहें चढ़ गईं। अच्छा, अभी हंस दिया, और क्या पागल, तेरा रिश्ता अयांश मेहरा से है, जिन्हें छींक भी आती है ना तो हाईलाइट न्यूज बन जाती है, और जो हुआ है छोटी बात, नॉर्मल बात तो नहीं है। तुम वाइफ हो उनकी, सो टेंशन मत ले, जल्द पता चल जाएगा। जिसने भी किया है वो सामने आ जाएगा, जिसने टारगेट किया है आप दोनों को वो पकड़ में आ जाएगा, बच नहीं पाएगा। टारगेट? ये टारगेट बहुत महंगा पड़ने वाला है उनको, टारगेट के चक्कर में दी एंड हो जाएगा उनका। किसी की निजी जिंदगी में इतना नहीं घुसना चाहिए यार, सच में। अपने फायदे के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी पकने लग जाते हैं, कुछ भी बकवास करने लग जाते हैं। देखना, मिस्टर मेहरा छोड़ेंगे नहीं इन मीडिया वालों को, और स्पेशली उसे जिसने ये काम किया है। अब तक तो मिस्टर मेहरा भी जान चुके होंगे मीडिया वालों की बेकार हरकत को। क्या लगता है उन्हें, मिस्टर मेहरा के साथ मैं पैसों के लिए रह रही थी? मिस्टर मेहरा ने मुझे टाइम पास के लिए अपने साथ रखा था? ऐसा नहीं है, ये हम जानते हैं ना, जो नहीं जानते वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं यार, कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? कोई सेंस नहीं है क्या? हमारी शादी झूठ था, अचानक शादी की हमने, उस पर भी देखो कैसी कैसी कहानी बना रहे हैं। सडनली हुई शादी, जिसका कोई मतलब नहीं था, बस जरूरत थी, जरूरत खत्म, दोनों अलग। मतलब जरूरत तो मिस्टर मेहरा बताएंगे इन लोगों को, और तो कोई काम नहीं बचा इन मीडिया वालों की जिंदगी में। इनको जिस पर ध्यान देना चाहिए उस पर देंगे नहीं, फालतू काम करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। इन ऐसे मीडिया वालों के चक्कर में अच्छे मीडिया वाले भी बदनाम होते हैं। हाँ ये तो है, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है इन घटिया मीडिया वालों को गोली से उड़ा दूं। आरवी गुस्से से उबलते हुए बोली। अभी उसे शांत करता है, शांत शांत, तू थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे गर्म क्यों हो रही है? लगता है मिस्टर मेहरा की संगत का बहुत असर हो चुका है तुझ पर, इतना गुस्सा पहले तो नहीं आता था तुझे। अब देख जरा, ऐसा लग रहा है मेरे सामने आरवी नहीं बैठी, मिस्टर अयांश मेहरा बैठा है। बोला ना मैंने तुझे, ज्यादा टेंशन मत ले, मिस्टर मेहरा है ना वो संभाल लेंगे। और रही बात गोली से उड़ाने की, तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं, तेरा पति खुद ये काम कर लेगा, वो भी बड़ी सफाई से, सो डोंट वरी। आरवी अभी की ओर देखती है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे किसी को गोली से उड़ाना मिस्टर मेहरा का रोज का काम हो, शौक हो भी सकता है, द ग्रेट अयांश मेहरा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बोलते हुए अभी ने कंधे उचकाए। तभी आरवी ने पिलो उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। जस्ट शट अप, मेरा पति ऐसे गैरकानूनी काम नहीं करता, करता हो तो क्या, तो कहा ना वो नहीं करते ऐसा काम, तो नहीं करते, नहीं करते। एंड नाउ रिलैक्स। एक खंडहर जैसी सुनसान जगह जो कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, वहां पर कोई और शोर नहीं था सिवाय एक आदमी के कराहने के, उसकी दर्द भरी सिसकियों के और उसके गिड़गिड़ाने के। वो घुटनों के बल हाथ जोड़ आह भरता हुआ चोटिल अयांश मेहरा के कदमों के आगे सिर झुकाए हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था, जिसके सामने उसकी मौत खड़ी थी अयांश मेहरा के रूप में, जिसे देखकर उस आदमी की रूह थर थर कांप रही थी, पर उससे नजरें मिलाने में वो असमर्थ था। अयांश ठीक उस आदमी के सामने बेहद गुस्से में खड़ा था, जबड़ा कसा हुआ, आंखें जो अंगारों सी लाल, हाथ में गन जो उसने उस आदमी पर तान रखी थी और उसको बुरी तरह घूर भी रहा था। अयांश मेहरा इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था इस वक्त कि उसे कोई भी इस वक्त देखता तो डर के मारे उसकी आत्मा बुरी तरह से फड़फड़ा उठती। उस आदमी का डरना लाजमी था। वो क्या, अयांश के बगल में खड़ा विनीत भी अयांश को देख घबरा रहा था, जो अब किसी भी पल उस आदमी की जान ले सकता था, उसे गोली से उड़ा सकता था, जिसके प्रति उसे अयांश में दया के कोई हाव भाव नजर नहीं आ रहे थे। अयांश में क्या, अयांश की दूसरी तरफ खड़े पुलकित में भी हमदर्दी नजर नहीं आ रही थी उस आदमी के प्रति। वो भी उस आदमी को बहुत गुस्से से देख रहा था, मानो अयांश मेहरा ने उस आदमी को छोड़ दिया तो पुलकित रॉय उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। पहले ही उसने उस आदमी को अधमरा कर रखा था। विनीत का दोनों को देख गला सूखने लगा। अगले पल क्या होगा इससे अनजान, वो कभी अयांश की ओर देखता, कभी पुलकित की ओर, तो कभी उस आदमी की ओर, जिसके चलते अयांश आरवी के अलग होने की, आरवी के अयांश को छोड़ चले जाने की बात हर जगह फैल चुकी थी आज।
हालांकि विनीत ने तरुण के साथ मिल इस मामले को अच्छे से हैंडल कर लिया था। जो न्यूज़ थोड़ी देर पहले टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी, उस आग को बुझा दिया गया था, उसे रोक दिया गया था। रोकना ही था, रुकना ही था। अयांश मेहरा के ऑर्डर्स ही नहीं, उसकी ज़िंदगी से भी तो जुड़ा मामला था, तो कैसे वो होते रहता जो नहीं होना चाहिए था। यूं तो अयांश मेहरा के होते कोई भी अपनी नहीं चला सकता, अगर कोई चलाता भी है तो ज़्यादा देर तक नहीं चला सकता। मुंबई का इकलौता ऐसा शख्स जिसका खौफ कम नहीं था। यूं तो कोई ज़रूरत न करता खिलाफ जाने की, अगर कोई जाता भी है तो अपनी जान की बाजी को दांव पर लगाकर, जिसका जीता जागता उदाहरण अयांश मेहरा से माफ़ी मांगते हुए अपनी जीवन की भीख मांग रहा था। अंजाम सोचे बिना जिसने अयान से पंगा ले लिया था, अब जीवन मिलेगा या नहीं इसकी भी खबर नहीं थी। अंजाम जो सिवाय अयांश मेहरा के कोई तय नहीं कर सकता था, खिलाफ जाने वाला भी नहीं, और ये बात पूरी तरह सच थी। फिर वही होता है जो अयांश मेहरा चाहता है। तभी वो जगह गोली चलने की आवाज़ से गूंज उठी। विनीत ने आंखें बंद कर कानों पर हाथ रख लिए। पुलहित ने हैरान होते हुए फट से अयांश की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब कोई हाव भाव नहीं थे, गुस्से वाले भी नहीं। पुलकित उस आदमी की ओर इशारा कर कुछ कहता, उससे पहले वो आदमी अयांश के पैरों को पकड़कर रो पड़ा। पर अब उसके रोने में डर नहीं, खुशी थी। खुश था वो, अयांश ने उसकी जान जो बख्श दी थी। गोली तो चली थी, पर अयांश ने वो गोली उस आदमी पर नहीं बल्कि ऊपर की तरफ चलाई थी। नहीं मारा था उसने उस आदमी को। उस आदमी का रोना सुनते ही विनीत ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा, अयांश की ओर देखा, जो सामने देखते हुए गन अपने कोट में रख रहा था। विनीत ने गहरी सांस भरी और वो अयांश कहते हुए अपना हाथ अयांश की बांह पर रखता है। तभी अयांश विनीत की ओर देखते हुए उस आदमी को उठने को कहता है, उठो, पर वो खुद से नहीं उठ सका। कोशिश की पर इतनी चोट लगी थी उसे कि चाहकर भी उठ नहीं पाया। अयांश पुलकित की ओर देखता है और उसे उठाने को कहता है, तो पुलकित हैरान सा उस आदमी को पकड़कर अयांश के सामने खड़ा करता है। अयांश उस आदमी के, अभी अभी जो तुमने कहा फिर से कहो। वो आदमी आह भरता, हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे, आगे बोलता अयांश ने बात काट दी, ये नहीं जो आखिर में कहा तुमने, अभी वो फिर से कहो, कहो क्रमशः।